ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 12 पृष्ठ संख्या 476 सब लोग निकालिए मेरे पीछे बोलिए। यदादित्य गतम तेजो जगन भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम्। यदादित्य गतम तेजो जगन भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम्। यदादित्य गतम तेजो जगन भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम्। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। यत् जो आदित्यगतम सूर्य प्रकाश में स्थित तेज तेज जगत सारा संसार भासयते प्रकाशित होता है अखिलम संपूर्ण। यत् जो चंद्रमसि चंद्रमा में यत् जो च भी अग्नो अग्नि में तत् वह तेज तेज विद्धि जानो मामकम् मुझसे सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भासयति अखिलम्। जो सूर्य में तेज है जिसके द्वारा पूरा जगत प्रकाशित होता है वो तेज समझो कि मेरे से आया है। और यत् चंद्रमसि चंद्रमा के द्वारा भी चंद्रमा में भी जो तेज है वो भी मेरे से आया है। यत् चाग्नो और जो अग्नि में भी तेज है वो मेरे से आया है कि भगवान बता रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि कोई नहीं समझ पाता कि कैसे हो रहा है। क्या क्या कैसे हो रहा है? सूर्य में प्रकाश कैसे आ रहा है कि नहीं, कोई नहीं जान पाता है। सूर्य में प्रकाश कैसे आ रहा है, चंद्रमा में प्रकाश कैसे आ रहा है, अग्नि में प्रकाश कैसे आ रहा है, कोई नहीं जान सकता। तो प्रभु जी क्या कहते हैं, लेकिन भगवान ने अगर जो बताया है अगर उसी को ही हम समझ लें, उतना ही अगर स्वीकार कर लें जो भगवान ने बताया है, तो ये हमारे पास पूर्ण ज्ञान हो गया। पूर्ण पुरुष के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो भी पूर्ण होता है ना। तो ये पूर्ण है, भगवत गीता में पूर्ण ज्ञान है। भगवान ने कहा कि मेरे से आ रहा है। अब ये सब कुछ जरूरत नहीं है जानने की कि कैसे आ रहा है, लेकिन भगवान ने कहा है कि सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरे द्वारा आ रहा है, चंद्रमा में प्रकाश मेरे द्वारा आ रहा है, अग्नि में प्रकाश मेरे द्वारा आ रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं उससे यह है, नहीं आगे, प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चार प्रकार से हमें प्रकाश मिलता है। ये पूरा जगत क्या है, अंधकार है। ये पूरा जगत स्वभाव से क्या है, अंधेरा है ना। इस अंधेरे को दूर करने के लिए एक तो सूर्य है, सूर्य से अंधकार दूर होता है, और जब सूर्य नहीं होता है तो चंद्रमा से अंधकार दूर होता है, और चंद्रमा भी नहीं होता है तो अग्नि से अंधकार दूर होता है, या फिर बिजली है ना। तो चार चीजें हैं। तो जो भगवान ने कहा है सूर्य चंद्रमा अग्नि, उसके साथ में प्रभुपाद जी बिजली भी जोड़ रहे हैं कि बिजली को भी आप समझो कि कृष्ण से ही कि बिजली में प्रकाश आ रहा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। तो ये कृष्ण भावनामृत है क्या? अगर आप इतना भी सोचें कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, और उन्होंने सूर्य में प्रकाश दिया, चंद्रमा में प्रकाश दिया, अग्नि में प्रकाश दिया, ये भगवान की कितनी दया है हम बद्ध जीवों के ऊपर, तो कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ हो जाता है यहीं से। भगवान की कृपा समझो, है कि नहीं? लेकिन सामान्य व्यक्ति कभी सोचता नहीं है कि ये भगवान की कृपा है। रोज सूर्य को देखते हैं, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा आता है, अस्त होता है ना, अग्नि जलाते हैं, है ना, अग्नि का कितना उपयोग है, सूर्य का कितना उपयोग है, सामान्य जीवन में सब कोई देखता है, लेकिन कोई नहीं सोचता है कि ये भगवान की कृपा है ना। लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ कहाँ से होता है? जब आप भगवान की कृपा देखो कि देखो ये भगवान की कितनी कृपा है कि नहीं, भगवान की कितनी कृपा है। अब देखिए बिजली का जो है ना, इतना प्रकाश जो हो रहा है इस कमरे में, है ना, तो इसके लिए कितना खर्चा आ रहा है और कितने तार जो है ना लगाए गए हैं, है कि नहीं। तो मनुष्य ने कितना प्रयास किया है तब इतना प्रकाश पैदा हो रहा है बिजली का। और सोचो सूर्य का प्रकाश, इतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश है ना, और कितना व्यापक है सूर्य का प्रकाश, है ना। तो इसके लिए भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था की है, कितनी कृपा है भगवान की, ये सोचो। तो यहीं से कृष्ण भावनामृत क्या प्रारंभ होती है, और इससे क्या होगा, बद्ध जीव उन्नति करता है, ये उन्नति करने का अवसर है। कितना सरल है उन्नति करना, कि आप देखो भगवान की कितनी कृपा है, सूर्य चंद्रमा और अग्नि के रूप में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं, और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान अपने अंशों पर कृपा करने के लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर जब इस भौतिक संसार में भगवान ने इतनी कृपा करी है तो फिर आध्यात्मिक जगत में कितनी कृपा नहीं करेंगे, ये सोचना चाहिए, और ये सोच करके हमें भगवान के धाम जाने की इच्छा करनी चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। संपूर्ण सौर मंडल का मतलब पूरा ब्रह्मांड। हम लोग एक बंद अंडे के अंदर हैं, एक अंडा है जो चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर हम हैं, और उस अंडे को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्म का मतलब बड़ा, एक बहुत बड़ा अंडा है, और उस पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं, सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। इस बात को समझो, भगवान ने एक बल्ब जो है बनाया है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, एक बल्ब, वो क्या है? सूर्य है ना। भगवद गीता में 10:21 कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम सती। भगवान की विभूति योग में भगवान ने कहा है कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, सूर्य नहीं है, है कि नहीं? तो आजकल के वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि चंद्रमा अलग है और सूर्य अलग है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, है ना, सूर्य का प्रकाश ही परावर्तित होता है। और जब भगवान कहते हैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नक्षत्र हैं वो भी चंद्रमा के समान हैं, मतलब उनमें अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का ही प्रकाश से ही चमकते हैं, है ना। तो आजकल के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जितने नक्षत्र हैं तारे ये क्या हैं? सूर्य हैं, बड़े बड़े सूर्य हैं, है ना। लेकिन ये गलत है। प्रभुपाद जी इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि जितने नक्षत्र हैं वो चंद्रमा के समान है, सूर्य के समान नहीं है। सूर्य में अपना प्रकाश होता है लेकिन चंद्रमा में और दूसरे तारों में अपना प्रकाश नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। अब जो वैज्ञानिक लोग व्याख्या करते हैं कि सूर्य में प्रकाश कैसे आ रहा है, तो वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, क्या एटॉमिक फ्यूजन, एटॉमिक फिजन, इस तरह की व्याख्या करते हैं, उसमें परमाणु से इलेक्ट्रॉन फूटते हैं, निकलते हैं, उससे जो ना ऊर्जा पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है, और उस हिसाब से उनका विचार है कि भाई सूर्य में जो इतना प्रकाश जो पैदा हो रहा है और इतना गर्मी जो पैदा हो रही है, तो उस इस हिसाब से तो सूर्य का 40,000 टन जो है भार घट रहा है एक सेकंड में, सूर्य का एक सेकंड में 40,000 टन भार घट रहा है ना। तो उस हिसाब से तो सूर्य का भार घटता जाएगा, है कि नहीं? इन करोड़ों करोड़ों सालों से सूर्य का भार नहीं घट रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं घट रहा है ना। क्यों? क्योंकि भगवान का ये आध्यात्मिक तेज है, भगवान का आध्यात्मिक तेज है। ये ब्रह्मांड जिसके अंदर हमें, ये तो अंधकार का है, लेकिन ब्रह्मांड के बाहर असीमित आकाश है जिसे कहते हैं आध्यात्मिक आकाश, और उस आकाश में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान के ब्रह्म ज्योति, भगवान की ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति का ही जो ना प्रकाश सूर्य में है, इस कारण से सूर्य चमक रहा है और उसकी चमक घट नहीं रही है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं, वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं, अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। तो जब सूर्योदय होता है तो सब लोग उठ जाते हैं, है ना। तो सूर्य से जो है ये पूरा जो जीवन है चलता है सूर्य के कारण। और अग्नि का कितना उपयोग है, प्रभुपाद जी कहते हैं, आप सोचो कि ये जो अग्नि है जिसका आपके दैनिक जीवन में इतना उपयोग है, किसने बनाई है ना। अगर आप ये सोचो कि भगवान ने बनाई है, आप भगवान के जो है कृतज्ञ हो जाओ, भगवान की कृपा देखो, तो आप जो है अपने जीवन में उन्नति कर सकते हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता, अतः यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। देखा, चंद्रमा का कितना उपयोग है लोग जानते नहीं। चंद्रमा के प्रकाश से ही पोषण आ रहा है, यानी विटामिन आ रहे हैं, स्वाद आ रहा है फलों में सब्जियों में, जो स्वाद आ रहा है और विटामिन आ रहे हैं ये चंद्रमा के प्रकाश से आ रहे हैं, है ना। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान की कृपा से ही जी रहे हैं। गर्मी के दिनों में चंद्रमा की जो चांदनी है वो बड़ी शीतल होती है, गर्मी दूर होती है चंद्रमा की चांदनी से। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा ना चंद्रमा ना अग्नि, और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावन व्रत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप जो है अपने दैनिक जीवन में हमेशा सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं और अग्नि को देखते हैं, और इनका कितना उपयोग है, अग्नि का कितना उपयोग है। आप भोजन पकाते हो अग्नि के द्वारा, अगर भोजन को ना पकाएं आग में और आप खाएंगे कच्चा भोजन तो क्या हो जाएगा, पचाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अग्नि के द्वारा आप रोशनी पैदा करते हो, अग्नि के द्वारा जाड़ों में गर्मी पैदा करते हो, इतना उपयोग है। तो भगवान को समझना कितना आसान है, भगवान को देखना कितना आसान है, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आप जो है बहुत आसानी से भगवान से प्रेम कर सकते हो। भगवान से प्रेम करने का ये तरीका है। अब श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में कुछ बातें विस्तार से बताई गई हैं, जैसे सूर्य। अब देखिए सूर्य का जो प्रकाश है, भगवान ने कैसी व्यवस्था की है सूर्य की, सूर्य का रथ कितना बड़ा है और मानसोत्तर पर्वत में सूर्य चल रहा है, किस गति से सूर्य चल रहा है, ये सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो इसको सुन करके आपको सोचना चाहिए, देखो भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था की है, किसके लिए, आपके लिए। सूर्य की व्यवस्था की है, एक जैसे बहुत ऊंचा बल्ब सरकार लगाती है, और ऊंचाई में बल्ब क्यों लगाते हैं, खंभे क्यों लगाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बदमाश होते हैं, दुष्ट होते हैं, बल्ब को तोड़ देंगे। इसलिए सरकार क्या करती है, बहुत ऊंचा खंभा लगाती है और बहुत पावर का बल्ब लगाती है, जैसे काफी दूर तक प्रकाश फैला हो, फैले और कोई पत्थर मार के भी ना तोड़ पाए बल्ब को, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान ने कितना ऊंचा बल्ब लगाया है, कोई नहीं जो है ना उसको रोक सकता है। सूर्य के उदय को रोक नहीं सकता है, जिस समय सूर्य का उदय होना है निश्चित रूप से, चाहे जितने लोग प्रयास कर लें, चोर लोग चाहते हैं कि सूर्य का उदय ना हो, जिससे उनको और मौका मिले चोरी करने का, है ना। तो हजारों हजारों चोर मिलकर के भी रोक नहीं सकते सूर्य का उदय होगा, है ना। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, कोई जो ना उसको बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है, है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए कितना ऊंचा भगवान ने जो है सूर्य को बनाया है, जिससे कि कोई ना तो अपना नुकसान करे और ना सूर्य का नुकसान करे। अगर नीचे होता सूर्य तो अपना भी नुकसान करते लोग, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उस अंतरिक्ष के मध्य भाग में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करता है और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है, जिससे वे देख पाते हैं। सूर्य ही नेत्रों का देवता है, सूर्य से ही आपके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। श्री भगवान की आज्ञा के अनुसार ये सूर्य चलता है। देखा, सूर्य को भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है और भगवान के आदेश के अनुसार ही सूर्य चलता है। भगवान ने आदेश दिया है सूर्य को कि इस समय तुम्हें तेज चलना है, इस समय तुम्हें धीरे चलना है, इस समय तुम्हें रुकना है। तो वो सब उसी प्रकार से सूर्य जो है ना अपनी गति को कभी तेज करता है, कभी धीमा करता है, कभी रोकता है। ये सब जो ना भगवान के निर्देश के अनुसार सूर्य कार्य कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि सूर्य का प्रकाश तुम मेरा प्रकाश समझो, आप ये समझो। क्योंकि भगवद गीता का अध्याय 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उत्तम पुरुष। पुरुष का मतलब क्या है, जिसमें पुरुषार्थ हो, कुछ विशेष कार्य करके दिखलाए, आपको प्रभावित करे। तो संसार में बहुत से पुरुष होते हैं जो अपना अपना पुरुषार्थ दिखलाते हैं, अपनी योग्यता दिखलाते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो उत्तम है वो कौन है? भगवान है, जो अपनी योग्यता दिखलाते हैं। और भगवान ने अपनी योग्यता दिखलाई क्या? सूर्य बना करके। अब सूर्य का जो है ना, कैसे भगवान ने बनाया है देखिए। सूर्य जो है उत्तरायण में आते हैं, फिर दक्षिणायन में होकर के गुजरते हैं, फिर विषुवत रेखा को पार करते हैं। तो उस समय क्या होता है, उनकी गति कभी मंद होती है, कभी शीघ्र होती है, और कभी मध्यम गति होती है। उत्तरायण में मंद गति से सूर्य चलते हैं, दक्षिणायन में शीघ्र गति से सूर्य चलते हैं। जब दक्षिणायन में होते हैं तो गति सूर्य की तेज होती है, तो दिन छोटा हो जाता है। उत्तरायण में जब सूर्य होते हैं तो सूर्य की गति धीमी होती है, तो दिन बड़ा होता है। विषुवत रेखा में मध्यम गति होती है, तो दिन बड़ा भी नहीं होता और छोटा भी नहीं होता है, बराबर होता है ना? ये सब कैसे होता है? क्या आपके चाहने से होता है? नहीं, भगवान ने कुछ सूर्य को नियम बना दिए, उसके अनुसार ही सूर्य चलता है। और समय के अनुसार 12 राशियों को सूर्य पार करता है। ऊंचे नीचे स्थानों में सूर्य चलता है, समान स्थानों में चलता है। इस प्रकार से दिन और रात को कभी बड़ा बनाता है, कभी छोटा बनाता है, कभी समान बनाता है। और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा ने स्तुति की है भगवान की। कैसे? यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सुर मूर्ति रसे तेजां यज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि देव भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ, जिनके नियंत्रण में ईश्वर का नेत्र माने जाने वाला सूर्य भी काल की स्थिर कक्षा में घूमता है। सूर्य समस्त लोकों का राजा है, उसमें असीम ताप और प्रकाश शक्ति है। यद्यपि सूर्य को सर्वशक्तिमान कहा गया है, और सचमुच ही ये इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान ग्रह है, फिर भी इसे गोविंद अर्थात श्री कृष्ण का आदेश पालन करना होता है। सूर्यदेव अपने परिधि से एक इंच भी विचलित नहीं हो सकते। एक इंच भी सूर्य ना तो पास हो सकते हैं ना दूर हो सकते हैं, समझ लो। अगर सूर्य एक इंच अगर हमारे पास आ जाए तो क्या हो जाएगा? सब जल जाएगा। और सूर्य एक इंच अगर दूर हो जाए हमसे तो क्या हो गया? सब जम जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? ये भगवान का आदेश है सूर्य को कि ना तो यहां से एक इंच इधर और ना एक इंच उधर, समझ रहे हैं? ये है भगवान का इस प्रकार का आदेश। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान के परम आदेश का पालन होता है। जब सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन और रात समान हो जाते हैं। देखा, ये भगवान की आज्ञा है। जब ये वृषभ आदि 5 राशियों पर चलता है तो दिन बढ़ता जाता है, और तब प्रति महीना आधा घंटा दिन घटता जाता है। और जब दिन और रात्रि पुनः जब तक दिन और रात्रि पुनः समान नहीं हो जाते तब तक घटता रहता है। जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों से होकर निकलता है तो दिन घटता है, फिर क्रमशः मास प्रतिमास दिन घटता जाता है जब तक दिन और रात समान नहीं हो जाते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन जब तक नहीं होते हैं, मतलब सूर्य के दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते रहते हैं, और उत्तरायण होने तक रातें लंबी होती जाती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे राजन, जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं, पंडितों का कहना है कि मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ है। सूर्य का जो रथ है वो चल रहा है कहां पर? मानसोत्तर पर्वत के ऊपर। मानसोत्तर पर्वत क्या है? ये जो पूरा भूमंडल है उसके चारों तरफ एक पर्वत की दीवाल है, और उस दीवाल के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर सूर्य चल रहा है।
पृथ्वी के चारों तरफ, और इसका परिक्रमा पथ कितना है, 9,51,00,000 योजन है। सूर्य है ना पूरी पृथ्वी की जब परिक्रमा करता है मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चलते चलते, तो कितना दूरी होती है, 9,51,00,000 योजन। इसमें 8 से गुणा करोगे तो मील बन जाएंगे, इतना सूर्य की परिक्रमा है। मानसोत्तर पर्वत पर सुमेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी पुरी है, दक्षिण में यमराज की संयमिनी पुरी है, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी पुरी है, और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरी है। इन सभी पुरियों में मेरु के चारों ओर सूर्योदय, मध्यान्ह, सूर्यास्त और अर्धरात्रि होती रहती है। तो हर समय कहीं ना कहीं सूर्योदय होता है, कहीं ना कहीं दोपहर होती है, कहीं कहीं शाम होती है, कहीं ना कहीं रात होती है, हर समय होता रहता है। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले प्राणी मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य सदैव उनके सिर के ऊपर रहता है। उस स्थान में जो है बहुत गर्मी पड़ती है सुमेरु पर्वत के ऊपर। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपने बाईं ओर छोड़ता हुआ जाता है, किंतु ये घड़ी की दिशा में भी घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर छूटता जाता है, क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है। जहाँ सर्वप्रथम उदय होता सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर वह अस्त होता दिखता है। उससे होकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो इस रेखा के दूसरे सिरे के प्राणी मध्य रात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी अपने ठीक दूसरी ओर स्थित देशों में जाए तो उन्हें सूर्य उस दिशा में नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य की विपरीत दिशा में जहाँ सूर्य उदय हो रहा है उसकी विपरीत दिशा में सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य इंद्र की पुरी यानी देवधानी से यमराज की पुरी संयमनी तक 6 घंटे में पहुंचते हैं। इंद्र के स्थान से यमराज के स्थान तक सूर्य को चलने में 6 घंटा लगता है, और कितनी दूरी, 2,37,75,000 योजन। 6 घंटे में सूर्य चलते हैं कितना, 2,37,75,000 योजन कितना चलते हैं, 8 से गुणा कर दो तो मील बन जाएंगे। सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी में पहुंचते हैं, और फिर वहां से चंद्रमा की पुरी में पहुंचते हैं, फिर इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार सूर्य एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट में सूर्य 34,800 योजन की दूरी चलते हैं। मतलब कितना हुआ, 8 से गुणा करोगे तो 2,72,06,400 मील सूर्य चलते हैं। कितने समय में, एक मुहूर्त यानी 48 मिनट में सूर्य चलते हैं 2,72,06,400 मील, कितना चलते हैं। देखा भगवान ने कैसी व्यवस्था की है सूर्य की। अब सूर्य देव का रथ, सूर्य देव का जो रथ है उसमें एक ही पहिया है, समझो। भगवान ने कैसा सूर्य का रथ बनाया है, सूर्य के रथ में एक ही पहिया है, तो फिर कैसे चलता है रथ। उसमें जो धुरा है, धुरा वो सुमेरु पर्वत से बंधा हुआ है, आप समझे। तो सुमेरु पर्वत से बंधा है धुरा, केंद्र है सुमेरु पर्वत, वहां से बंधा हुआ है सूर्य का रथ। तो यहाँ एक पहिया है और वो उसके चारों तरफ, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है। देखा भगवान की कैसी व्यवस्था है। और वो जो पहिया है सूर्य के रथ का, उसमें बारह अरे हैं जो बारह महीने के होते हैं। जब एक पहिया घूमता है, सूर्य के रथ का एक पहिया घूमता है तो बारह महीने बीतते हैं, उसके जो बारह अरे हैं वो बारह महीने हैं। और जो छह नेमियां हैं उस पहिये में, वो छह ऋतुएं हैं, छह ऋतुएं बीतती हैं। और तीन चतुर्मास, ये तीन आमने हैं, नाभि सूर्य की तीन नाभि उस पहिये में, तो तीन बार चतुर्मास बीतते हैं। तो चक्र को धारण करने वाले ध्वरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर टिका हुआ है। सुमेरु पर्वत पृथ्वी के बीच में है और मानसोत्तर पर्वत पृथ्वी के चारों तरफ है, है ना। इस प्रकार से देखो भगवान की व्यवस्था। इसमें लगा ये पहिया कोलू की भांति निरंतर मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता है। कोलू का बैल जैसे चलता है ना, ऐसे सूर्य देव जो है ना चल रहे हैं सुमेरु पर्वत के चारों तरफ बंधे हुए हैं। देखो इस प्रकार से है, कोलू के समान ये धुरी एक दूसरी धुरी में लगी है जिसकी चौथाई लंबी, जो इसकी चौथाई लंबी है, मतलब 3,15,00,000 मील है। इस दूसरी धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से संलग्न है। देखो ध्रुव लोक से बांधा हुआ है दूसरी धुरी को, कितनी व्यवस्था है भगवान की, ध्रुव लोक से तक जो है ना बांधा हुआ है सूर्य की धुरी। इस रथ का भीतरी भाग कितना लंबा है सोचो, कितना बड़ा रथ है सूर्य का सोचो। इस रथ का भीतरी भाग 36,00,000 योजन लंबा, 36,00,000 योजन है, माफ करना चौड़ाई नहीं लंबाई, 36,00,000 योजन लंबाई है और एक चौथाई चौड़ा है। इसका चौथाई कर दो, 36,00,000 का एक चौथाई करोगे तो 9,00,000 है ना, 9,00,000 योजन चौड़ा है सूर्य का रथ, सोचो। और रथ के घोड़े 7 हैं, 7 घोड़े हैं सूर्य के रथ के, और इनके नाम क्या हैं, गायत्री, बृहति, जगती, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये 7 घोड़े इनके नाम हैं जो रथ को खींचते हैं। अब सूर्य के रथ का कोई सारथी भी होगा, सूर्य के रथ का सारथी भी कोई है, अरुण देव सूर्य के रथ के सारथी हैं, जो सूर्य देव के सामने बैठ करके रथ को चलाते हैं और घोड़ों को बस में रखते हैं और पीछे की ओर सूर्य देव को देखते रहते हैं अरुण। ये अरुण जो है गरुड़ के बड़े भाई हैं, गरुड़ जी जो है भगवान के वाहन हैं पक्षी, और अरुण जो है गरुड़ के बड़े भाई हैं जो कि सूर्य के सारथी हैं। ये दोनों भाई कश्यप जी के पुत्र हैं, कश्यप पिता हैं अरुण और गरुड़ के, और माता कौन है, विनता माता है, है ना। अच्छा अरुण देव सबसे आगे के आसन पर बैठ करके घोड़ों को हाँकते हैं किंतु अपनी बाईं ओर से पीछे मुड़कर सूर्य देव को देखते रहते हैं अरुण। अच्छा, और जो है सूर्य के रथ के आगे 60,000 ऋषि चलते हैं, सूर्य के रथ के आगे 60,000 ऋषि चलते हैं, उनका नाम है बाल खिल्ले, जो सूर्य के आगे रह करके स्वस्ति वाचन करते, वैदिक मंत्र पढ़ते हैं जिससे कोई बाधा ना आए, समझ रहे हो, वैदिक मंत्र पढ़ते हुए चलते हैं सूर्य के रथ के आगे आगे, कौन, 60,000 बाल खिल्ले नाम के ऋषि, जिससे कि
अच्छा, रथ के चलने में कोई बाधा ना पड़े।
इस प्रकार जो है सूर्य के रथ के साथ साथ जो है मुनि होते हैं, गंधर्व होते हैं और अप्सराएं होती हैं, नाग हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं और देवतागण हैं। और हर महीने ये जो है बदलते रहते हैं। और सूर्य की आराधना इस प्रकार से करते रहते हैं। गंधर्व हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के सामने गाते हैं। अप्सराएं क्या करती हैं, रथ के सामने नृत्य करती हैं। और जो निशाचर राक्षस हैं, ये सूर्य के रथ के पीछे पीछे चलते हैं। और जो सर्प हैं, वे रथ को सजाते हैं, सूर्य के रथ को सजाते हैं रथ, ये सर्प। और यक्ष जो हैं, रथ की रक्षा करते हैं। और बालखिल नामक ऋषि सूर्य को घेर करके स्तुति करते हैं कि किसी प्रकार की बाधा ना आए। इस प्रकार से जो है भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव एक क्षण में 2000 योजन और 2 कोस चलते हैं। समझे, सूर्यदेव एक क्षण में, एक क्षण का मतलब 4 मिनट, 4 मिनट में सूर्यदेव 2000 योजन और 2 कोस चलते हैं, मतलब 16004 मील। 4 मिनट में सूर्यदेव 16004 मील दूरी करते हैं, तय करते हैं। अगर आप 4 से विभाजन करोगे तो 1 मिनट में कितना हो गया, 4001 मील। 1 मिनट में सूर्यदेव चलते हैं कितना, 4001 मील चलते हैं। अच्छा, और आगे सूर्यदेव को समय कहते हैं। सूर्यदेव की 3 प्रकार की गतियां हैं, एक तो मंद गति, दूसरी तीव्र गति और तीसरी समान गति। इन 3 गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष गोलकों के चारों ओर यात्रा करने में जितना समय लगता है उसे ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर, इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। अच्छा, फिर सूर्य से ऊपर चंद्रमा है, सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है, 8,00,000 मील ऊपर है चंद्रमा सूर्य से, जो सूर्य से भी तेज गति से चलता है चंद्रमा। वह 2 पक्षों में संवत्सर के समान दूरी तय कर लेता है। इस प्रकार 2.25 दिन में सूर्य के 1 महीने के बराबर दूरी तय कर लेता है चंद्रमा। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि चंद्रमा सूर्य से 1,00,000 योजन या 8,00,000 मील दूर है, तो यह अत्यंत विस्मयजनक लगता है कि चंद्रमा तक आधुनिक यात्राएं संभव हो सकेंगी। क्योंकि चांद इतनी दूर है, इस कारण चंद्रमा तक अंतरिक्षयान कैसे पहुंच सकते हैं, ये संदेह की बात है। ये प्रभुपाद ने ये तात्पर्य लिखा था कब, 1965 में तात्पर्य लिखा था। और आगे चल करके फिर पता चला कि भाई लोग चंद्रमा तक पहुंच गए, तो लगता है कि भाई प्रभुपाद की बातों गलत है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि चंद्रमा पर नहीं पहुंचे वो लोग, और वो लोग धोखा दे रहे हैं, और फिर चंद्रमा में अब उड़ाने बंद कर दी हैं, ये कह करके कि चंद्रमा में कुछ नहीं है, खाली कुछ मिट्टी है, धूल के कण है, कुछ नहीं चंद्रमा में, जबकि ऐसी बात नहीं है। चंद्रमा में बहुत वनस्पति है, बहुत संपत्ति है चंद्रमा में, यहां से लाखों गुना ज्यादा संपत्ति है। जो पुण्यात्मा है वही जाते हैं चंद्रमा में, लेकिन चंद्रमा में तो जा नहीं सकते और गए नहीं, तो क्या कह दिया कि हम चंद्रमा में हो आए और वहां पर क्या है, कंकड़ पत्थर है और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से एक लोमड़ी अंगूर पाने के लिए उछलती रही और जब नहीं मिले अंगूर तो क्या बोली कि मैंने उछल करके खा लिए अंगूर और खट्टे हैं, देख लिए मुझे नहीं चाहिए। आप समझे, उसी प्रकार से बहुत उड़ाने भरी
और चंद्रमा में पहुंच तो नहीं पाए, तो धोखा दे करके फोटोग्राफी ही पृथ्वी में किसी सन की फोटोग्राफी लेकर के दिखा दिया कि देखो हम फोटो लाए चंद्रमा का, वहां पर ये है वो है, झंडा गाड़ दिया चंद्रमा में कि हम चंद्रमा में झंडा गाड़ के आ गए, है ना, इस प्रकार से धोखा दे रहे हैं। तो बिल्कुल लोमड़ी का जो है ना जो चरित्र है बस वही है वैज्ञानिकों का आजकल के, है ना। तो इस तरह से प्रॉपर लिख रहे हैं, हमें वैदिक गणनाओं को ही स्वीकार करना होगा, ये गणनाएं स्थाई हैं। प्राचीन ज्योतिष गणनाएं वैदिक साहित्य में अंकित हैं और आज भी सही हैं। वैदिक अथवा आधुनिक गणनाओं में कौन अच्छी है ये औरों के लिए रहस्यपूर्ण क्यों ना हो, हमारे विचार से वैदिक गणनाएं ही सही हैं। जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में तो इसका प्रकाश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिसे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता है कृष्ण पक्ष में तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है, चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र बदलता है। चंद्रमा रात्रि की शीतलता प्रदान करके अन्न की वृद्धि करता है, इसी चंद्र देव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है, फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया है। समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है, वह अन्नमय भी कहलाता है, क्योंकि समस्त लताओं और वृक्षों को शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्माओं का प्राणाधार होने से वह अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, लताओं तथा अन्य जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं, फलतः चंद्रमा सर्वमय कहलाता है। तो इस तरह से हमने चर्चा करी है सूर्य की और चंद्रमा की, और अग्नि की भी चर्चा कर सकते हैं। अग्नि को जो है एक बार ऐसा भी हुआ कि तेज नहीं रहा अग्नि में, अग्नि का तेज घट गया। कारण क्या था कि किसी राजा ने 12 साल तक अग्नि के नाम से घी की आहुति डाली, लगातार घी की आहुति डाली अग्नि के नाम से। अग्नि देवता ही घी को पीते पीते क्या हो गया, उनको अपच हो गया। अब वो अग्नि में तेज नहीं रहा तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए अग्नि देवता। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम्हारी अपच अगर दूर करना है तो तुम क्या करो, खांडव वन है जो, खांडव वन को पूरा जला करके उसका भोजन करो, उसमें जितने पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सब जला करके और खा लो तो तुम्हारी अपच दूर हो जाएगी। अब अग्नि देवता की समस्या ये है कि जब वो जलाते हैं उस जंगल को तो इंद्रदेव की आज्ञा से तुरंत वर्षा होती, और वर्षा होती तो अग्नि बुझ जाती, तो अग्नि देवता जला नहीं पाते। अर्जुन और कृष्ण एक बार बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं, अग्नि देवता ने देखा वो बड़ा अच्छा मौका है, जो कार्य कोई नहीं कर पाया अर्जुन कृष्ण कर सकते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ में है और कृष्ण अर्जुन के साथ में है तो बहुत दया मिल जाएगी, अब काम जरूर बन जाएगा, जरूर दया मिलेगी। इसलिए अग्नि देवता उस समय ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं अग्नि देवता हूं, आपसे एक कष्ट बताना चाहता हूं, मेरा कष्ट आप ही दूर कर सकते हो और कोई दूर नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने अपना कष्ट बताया कि ऐसी सी बात है, मेरा कष्ट है। अर्जुन ने कहा कि देखो महाराज, अगर आप हमको ऐसा धनुष दो जो हमारे हाथों के वेग को सहन कर सके, और ऐसे तरकस दो जिनमें बाण कभी समाप्त ना हो, तो आपका काम हम कर सकते हैं। तो अग्नि देवता ने फिर जो है वो गांडीव धनुष दिया अर्जुन को, और दो अक्षय तरकस दिए जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होंगे, और भगवान कृष्ण को चक्र ला करके दिया। हालांकि भगवान का ही चक्र है, लेकिन ये भी एक लीला है कि अग्निदेव ने भगवान को चक्र ला करके दिया। तब अग्निदेव को अब अर्जुन ने कहा कि अब आप जलाओ वन को और हम जो है अब आपकी रक्षा करेंगे। जितने पशु पक्षी हैं वो भागे नहीं, सबको अग्नि देवता के पेट में जाना है। इसलिए अग्नि देवता ने जब जलाना शुरू किया तो पशु पक्षी भागते हैं। भगवान कृष्ण अपने चक्र से उनके सिर काट काट करके गिरा रहे हैं, अर्जुन अपने बाणों से उनको काट काट करके गिरा रहे हैं। कोई जान नहीं सकता, चारों तरफ से जंगल में उन पशु पक्षियों को मार करके और जलाना है अग्नि देवता को तृप्त करने के लिए। अब इंद्र को पता चला कि खांडवन में आग लगी है, इंद्रदेव को खांडवन बड़ा प्रिय है तो वर्षा की। जब इंद्र ने वर्षा की तो फिर अग्नि देवता को फिर दिक्कत हुई, अब तो अग्नि बुझने लगी। अर्जुन ने क्या किया, अपने तर्क से करोड़ों करोड़ों बाण निकाल करके ऐसे छा दिए आकाश में कि उतना स्थान क्या हो गया, बाणों से छा गया, वर्षा नहीं हो सकती। इतने बाण मारे, सोचो अर्जुन का कैसा पुरुषार्थ है। इस प्रकार से अग्नि देवता को तृप्त किया है ना। तो अग्नि देवता में जो तेज है ये भगवान की कृपा से ही है, हमें ये समझना है। अब किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न है कि जब सूर्य और चंद्रमा के द्वारा पूरे संसार का जीवन चलता है, तो जब सूर्य उदय होता है तो हम उनकी पूजा करते हैं, जब अस्त होते हैं तो हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? नहीं, यहाँ पर भगवान का ये कहना है कि उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर कृष्ण की आपने पूजा कर ली तो उनकी पूजा अपने आप हो गई सब, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ही सब देवताओं को अपना अपना कार्य प्राप्त हुआ है। सब देवता कृष्ण के नौकर हैं। अगर आपने कृष्ण की पूजा कर ली तो सब देवताओं की अपने आप पूजा हो गई, अलग से पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, सूर्य की, चंद्रमा की, किसी की भी। इस श्लोक में जो भगवान का कहना है वो यही है कि एकमात्र अगर आप कृष्ण के शरण लोगे, आप सबके ऋणों से मुक्त हो जाओगे, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसी फिर कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, अहम तो असर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब पाप का मतलब ये भी है, अगर आप अलग अलग देवताओं ने जो आपके ऊपर कृपा करी है अगर आप उनकी पूजा नहीं करते तो आपको पाप लगता है। भगवान की अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो सब पापों से तुम छूट जाओगे। हैं? आपने इस देवता की पूजा नहीं की, आपने उस देवता की पूजा, 33 करोड़ देवता हैं, आप सबकी पूजा कर भी नहीं सकते है ना। इस पूरी सृष्टि में 33 करोड़ देवता हैं जो कि व्यवस्था कर रहे हैं है? लेकिन अगर कृष्ण की आप पूजा करते हो तो सब देवताओं की अपने आप पूजा हो जाती है। ये उसी प्रकार से है जैसे पेड़ की जड़ में आपने पानी डाला तो उसके करोड़ों करोड़ों पत्ते हैं, सब में पानी पहुंच जाता है, अलग से आपको एक एक पत्ते में पानी देने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे पेट में आपने भोजन पहुंचाया तो पूरे शरीर में भोजन पहुंच जाता है, है? अलग से आंखों को भोजन देने की जरूरत नहीं है, कान को भोजन देने की जरूरत नहीं है, है ना। तो यही वैज्ञानिक तरीका है, हाँ, अपने जीवन में उन्नति करने का जो वैज्ञानिक तरीका है वो यही है कि अगर आप कृष्ण का जो है अगर आप ये कृपा देखते हो, कृष्ण की कितनी कृपा है, उन्होंने सूर्य ये स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में सूर्य स्वतंत्र नहीं है, चंद्रमा स्वतंत्र नहीं है, है? 10 नाम अपराध हुए, हम लोग रोज बोलते हैं 10 नाम अपराध, भगवान के नाम के अपराध। इनमें दूसरे नंबर का अपराध ये भी है कि जितने भी देवता हैं उनको भगवान के समान अगर समझते हो या उनसे स्वतंत्र समझते हो तो ये अपराध है। तो ये सब जो ना भगवान के सेवक हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त होते हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक मनमंत्र में सब देवता बदल जाते हैं, हा? और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। तो सोचो ब्रह्मा के एक दिन में जो है 14 बार ये सब देवता बदलते हैं, सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, मनु बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं, सप्तऋषि बदलते हैं, सब बदलते हैं। और फिर इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो है दिन और रात होते होते उनके महीने साल बीतते हैं और 100 साल की आयु ब्रह्मा जी की समाप्त हो जाती है, तो फिर ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं, है ना। ये भगवान ऐसे हैं जो कभी बदलते नहीं, तो सोचो भगवान की क्या महिमा है। तो इस प्रकार हरे कृष्णा प्रकार से हमें भगवान की महिमा देखनी है। भगवत गीता जो है सब शास्त्रों का राजा है। भगवद गीता, इसमें जो है ना कृष्ण ही बताते हैं, एकमात्र मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान, यही सब धर्म है कि इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, तो फिर कितने धर्म हो जाएंगे आपके जीवन में है? आपके ऊपर तो जो है ना कृपा कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं, दूसरे जीव कर रहे हैं, पशु पक्षियों की कृपा है, कई प्रकार से कृपा हो रही है ना। तो इसका तो भी फिर यही मतलब है कि आप सबके ऋण को चुकता करो, आपके ऊपर कितने प्रकार के ऋण हैं, है ना, लेकिन आप सबके ऋण को चुकता नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो आप फिर सबके ऋण से मुक्त हो जाते हैं, फिर कोई जरूरत नहीं अलग से सबके ऋण चुकाने के लिए, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए, अगर कृष्ण की आप भक्ति करते हैं तो अपने आप जो है प्रकृति सहयोग देती है, यहां तक कि ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, वर्षा रात को होती है दिन को नहीं होती, जिससे कोई दिक्कत ना हो। पहले के युगों में ऐसे राजा होते थे कि जिनके प्रभाव से प्रजा जो है ना जब कृष्ण की भक्ति में लगी होती थी तो ना तो सिंचाई की अलग से जरूरत होती थी, वर्षा के द्वारा सिंचाई होती थी सब फसलों की, और ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती, ना ज्यादा ठंड पड़ती, बीमारियां नहीं होती, कोई बीमार नहीं पड़ता, किसी के शरीर में थकान नहीं आती, है ना। तो ये सब जो ना सुविधाएं ऐसे राजाओं के राज्य में होती थी, जो राजा बिल्कुल भगवान के शुद्ध भक्त होते थे, है ना। तो कुछ भी जरूरत नहीं है अलग से कुछ भी करने की, कोई पूजा करने की। और कोई प्रश्न किसी का?
हाँ, तो इनका प्रश्न है कि इन सभी देवताओं का ऋण चुकाने के लिए क्या किया जाए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो आपके जितने कर्तव्य हैं सब अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि पृथ्वी घूमता है लेकिन दिखाई नहीं देता किसी को। देखिए, आजकल के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी नहीं घूमती है, पृथ्वी स्थिर है। आप समझे? अब आप या तो उनकी बात मानो या शास्त्रों की बात मानो। तो शास्त्र बताते हैं, अगर उनकी बात मानोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अनादिकाल से शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं और कभी बदलती नहीं है, जबकि वैज्ञानिकों की बातें हमेशा बदलती रहती हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इंद्रियां अपूर्ण हैं, उनमें धोखा देने की भी प्रवृत्ति है। आप समझे ना? इसलिए हमारे शास्त्र अगर कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है तो आप यही मान लो कि पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी जो है शेष नाग के जो है ना फण पर स्थित है, जैसा बताया गया वैसा स्वीकार कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं प्रश्न करूं, सूर्य का जो रथ है उसमें कितने घोड़े हैं, कौन बताएगा? सात घोड़े हैं। हाँ, सात घोड़े हैं। अच्छा देखो, सूर्य के जो किरणें हैं इनका भी जो है ना जब विश्लेषण किया जाता है तो सात रंग मिलते हैं, सूर्य की किरणों के सात रंग मिलते हैं। तो हमारे वैदिक साहित्य में लिखा है कि सूर्य के रथ के सात घोड़े हैं, तो ये बिल्कुल मेल खा रहा है कि सूर्य की किरणों में सात रंग मिलते हैं, है ना। अच्छा, और सूर्य के रथ के कितने पहिए हैं? एक ही पहिया है। एक पहिए से कैसे रथ चलता है?
एक उसका तो प्रभु जी मेरु पर्वत से बंधा हुआ है।
हाँ,
ध्रुव लोक से।
हाँ, क्योंकि सूर्य का जो है जो धुरा है वो सुमेरु पर्वत से बंधा हुआ है और ऊपर से ध्रुव लोक से बंधा हुआ है, है ना। इस प्रकार से जो है ना वो उसको आधार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो एक पहिए से ही चल रहा है। अब उस पहिए में कितने अरे हैं? बारह अरे हैं। तो बारह अरे से फिर क्या होता है? बारह महीने। सूर्य का जो है जब एक पहिया पूरा घूमता है तो कितना समय बीतता है? एक साल। सोचो कितना बड़ा पहिया होगा सूर्य के रथ का, एक साल में सूर्य का पहिया एक चक्कर घूमता है, सूर्य का पहिया है ना। अच्छा और हमने क्या बताई, सूर्य के रथ की गति कितनी तेज है, एक मिनट में कितना चलता है सूर्य, 4,04,001 मील, 4,001 मील एक मिनट में चलता है सूर्य, सोच लो 4,001 मील एक मिनट में सूर्य चलता है। और चंद्रमा सूर्य से कितना ऊपर है, 1,00,000 योजन, 8,00,000 मील ऊपर है चंद्रमा। तो जो लोग कहते हैं कि चंद्रमा में पहुंच गए हैं वैज्ञानिक लोग, वे कहां तक सही हैं, सही हैं, गलत हैं, चंद्रमा में नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। हाँ आपका प्रश्न है कि बाल खिले ऋषि कौन होते हैं, बाल खिले ऋषि जो है मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन अंगूठे के पोर के आकार के हैं, इतने छोटे हैं बाल खिले ऋषि, है ना। ये बाल खिले ऋषि जो है, एक बार क्या हुआ था कि कोई यज्ञ हो रहा था, और ये बाल खिले ऋषि जो है उस यज्ञ में कुछ लकड़ी लेने के लिए गए, तो एक लकड़ी का टुकड़ा जो है ना वो ला रहे थे, तो एक गड्ढे में वो गिर गए, तो उस गड्ढे से नहीं निकल पा रहे थे बेचारे, अंगूठे के आकार के छोटे छोटे ऋषि हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, थोड़ी लकड़ी लाने में दिक्कत हो रही थी। और इंद्र ने जो है ना अपने ऐरावत हाथी में बहुत सी लकड़ी रख करके और क्या किया, इंद्र ने उन ऋषियों के ऊपर से हाथी को चला दिया, तो उनके ऊपर से हाथी निकल गया। अब तो बड़ा अपमान हुआ ऋषियों का, ऋषि लोग बेचारे छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा नहीं ला पा रहे हैं सब इकट्ठा मिल करके, और इंद्र ने ऐरावत हाथी के ऊपर बहुत सी लकड़ी रख करके और उनके ऊपर से गुजार दिया, उनके ऊपर से निकल गया ऐरावत हाथी। तो बाल खिले ऋषियों ने श्राप दिया, क्या श्राप दिया, कि तुम्हारा इंद्रपद छिन जाए, दूसरा इंद्र आएगा जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो उनके श्राप से फिर क्या हुआ कि गरुड़ जी आए और उन्होंने इंद्र को हराया, सब देवताओं को हराया। तो बाल खिले ऋषियों का श्राप था, इस कारण से गरुड़ जी ने जो है इंद्र को हराया, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा गौरण दाय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। धन्यवाद। हरे कृष्ण।